ईशा परिकृतता या त्रिमुनि करके वाक्य है। वो कहते हैं कि दया जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो खरीदी या बेची जा सके। दया ये क्या करती है कि किसी भी प्राणी के दुख को देखकर, वो जो दुखी दुखी मनुष्य है वो चाहे परायों में हो और चाहे बंधु वर्ग में हो, परेवा बंधु वर्ग और चाहे मित्रों में हो और चाहे द्वेष करने वाले में हो और चाहे बैरियों में हो, जिसको दुख में देखा उसके लिए उस वो दुख है, उसको दुख में देख करके अपने में आ गया। अपने दुख को दूर करने के लिए जैसे चेष्टा करके करता आदमी बिना किसी अभिमान के, एहसान के, प्रकाशन के, विज्ञापन के, पूरी लगन से उस प्रकार उस दुख को मिटाने के लिए चेष्टा करने लगा, इस वृत्ति का नाम दया है। वो स्वांत तो उस दया में, उस सेवा में उसे इतना सुख मिलता है कि वो अपनी सेवा करता है, अपने ही काम करता है, अपने लिए वो करता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो स्थिति वास्तविक सेवा सेवा कराने में संलग्न करती है। तो ये दुखियों के साथ मिलकर दुखियों की सेवा करने का जो प्रयत्न होता है ये महाराज भगवान की बड़ी सेवा है। और ये समझे कि इनमें सब में भगवान जो छोटों में विशेष रूप से देखे, दुखियों में खास तौर पर देखे, जहाँ अन्न नहीं है वहाँ समझना चाहिए कि भगवान यहाँ पर इन सब के रूप में प्रकट होकर अन्न चाह रहे हैं। जहाँ बीमारी फैली है समझना चाहिए कि भगवान ही बीमार बनकर इस समय दवा के रूप में, सेवा के रूप में सेवा चाह रहे हैं। जहाँ विपत्ति आ गई है वहाँ उस विपत्ति के रूप में भगवान आए हैं, वो सेवा चाह रहे हैं, विपत्ति से हटाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार निरंतर मनुष्य भावना रखे तो उसको जाने की आवश्यकता ही मिलेगी, उसके पास इस प्रकार के केस आते रहेंगे। स्वाभाविक उसकी वृत्ति अपने आप वहाँ पर पहुँच जाएगी, वो जैसे को आदमी चाहता है उसमें से मिल जाता है। तो ऐसे लोगों की सेवा उसके जीवन का व्रत बन जाएगा। ऐसे आदमी हमने देखे हैं और हम जानते हैं कि जिनकी सेवा का नाम कहीं नहीं है, जिनको कोई जानता भी नहीं है, जो आर्थिक सेवा भी करते हैं दूसरे नाम से और शारीरिक सेवा करते। हमारे वो डागा जी हैं, शिव कृष्ण जी डागा, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आजकल वृंदावन के पास रहते हैं। उनके आसपास रहने वाले कोई भी हों, चाहे बड़े अफसर हों, चाहे बड़े साधु हों, चाहे गरीब से गरीब आदमी हों, उनकी सेवा से कोई आदमी बचे ये संभव नहीं है। बचे वंचित तो है ही, बचे क्यों उस प्रकार करते हैं कि जैसे आप आए और आप जाड़े जाड़ा थार आप पहुँचे, उनको मालूम हो गया कि कोई आदमी आया है और अच्छा आदमी है, जाड़े में कपड़ा नहीं लाया है, रात को सी पड़ेगा, तो आप मंदिर गए, कहीं गए, मेरी पीछे से कंबल रखे आए, कौन रख गया पता नहीं, कंबल आपने ओढ़ी ओढ़ करके आप ले गए तो आपकी इच्छा, और वहीं अगर छोड़ गए तो दूसरे दिन जाके देखें कंबल है उठा लाए, इसमें कोई आदत थे नहीं उनको। ये एक उदाहरण। इस प्रकार से उनकी से तो वो दिन रात उनका जीवन सेवा में बीतता है। इसी प्रकार एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत रुपया दान कर चुके हैं और करते हैं, पर कहीं उनका नाम आया ही नहीं है कि वो दान करते हैं, बस किसी और के नाम से, कहीं और उनके नाम की कहीं पर चर्चा नहीं होती कि अमुक आदमी ये करता है। ये गुप्त सेवा, गुप्त से हमारे वो ये रामगढ़ के सेठ रहे पहले, हमारे औदारों में ही वो हमारे पूर्वज ही थे, उनके पीछे वो जब लोगों को मालूम हो गया तो उसी उन्होंने छोड़ दिया, दूसरा तरीका निकाला। रामगढ़ में थे तो वो जानते थे कि किसकी क्या हालत है, किस भाई की क्या हालत है, तो उनको तो मालूम होना ही हो हो ही जाता कि उनने सहायता की है, तो क्या करते, ये बहुत से इनके दूध होता घर में, तो रात को ये दही जमाते, तो ये उनका नियम उनके लिए कि दही रात को हम जमाया करेंगे, जो लोगों के यहाँ भेजना है वो हम जमाया करेंगे। शेर स्वयं जमाते तो वो बहुत से कटोरे छोटे बड़े उन्होंने छोड़े थे दूध, तो जो कटोरे भेजने के होते, ये पहले ऐसी प्रथा थी अपने यहाँ पर, जिनके घर में गाय होती वो अपने संबंधियों के यहाँ दही भेजते दूध भेजते मक्खन भेजते, छाछ तो सब ले ही जाते, भेजा करते कि उनके यहाँ तो आजकल गाय नहीं, हमारे यहाँ गाय है, तो दही का कटोरा भेजते, हमारे यहाँ बहुत आते थे हम लोग भेजते थे, तो ये यहाँ की प्रथा थी। तो वो क्या करते रात को, वो सब उनका अंदाज रहता या क्या, उनको कैसे रखते हिसाब रखते, हम कटोरा उनके यहाँ भेजना है, उसकी यह हालत है, उसको इतना चाहिए, किसी में 5 रुपया, किसी में 10 रुपया, किसी में 1 सोने की मोहर, किसी में 2 मोहर, इस प्रकार वो रख देते नीचे और रख के जमा दे, दही जम गया, फिर जब भेजना होता तो खुद वो एक कटोरा भाई उसके यहाँ दिया, और ये नियम कर रखा था कि कटोरा खाली करके हाथ साथ नहीं लाना है, कल जब फिर जाएगा तब कटोरा आ जाएगा, एक कटोरा जाएगा, एक पहले से उन्होंने नियम बना दिया। तो ये बरसों तक ये बात चली, फिर जब फैल गई तो उन्होंने दूसरा और तरीका निकाला, तो घर में किसी को मालूम नहीं हो कि किसको क्या सहायता दी, उनको मालूम है क्या, लेने वाले फिर जान गए थे, जब कटोरा सेठ का आता था तो लोग अंदर ले जाते थे उस कटोरे को, अंदर ले जाके उसको दही निकालेंगे, इसमें क्या निकलता है बता दें, तो इसमें हम कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि लोगों को उन्होंने भिखारी बनाया, मांगने वाला बना दिया, अपाहिज बना दिया, पर यह कहना बड़ा सहज है, उस अवस्था में हम पढ़ें, उस समय हम सहायता की कैसी अपेक्षा करते हैं, कौन हमें दे जाए, क्या कर जाए, ये तब मालूम होता है कि जब हम समालोचक नहीं बन के उस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। मिर्सा भी आदमी तो बहुत बुरा आदमी है, रोज रोज आता है, अरे रोज रोज आप दुकान नहीं खोलते क्या, रोज रोज आप बीमार होने पर दवा नहीं लाते क्या, रोज रोज नौकरी पर आप नहीं जाते क्या, जिसको जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के लिए वो अगर उपाय करता है तो उसका क्या कसूर है। वो एक आदमी है बीमार है और वो दवा लाने वाला कोई नहीं है, पड़ोसी है, उससे कहता है कि भाई जरा दवा ला दिया करो, वो आज ले आया, कल उसने फिर बुलाया, भाई दवा तो आज नहीं आई, बोले हम भूल गए थे, अच्छा अब ला दो, फिर आ गई 3-4 दिन 5 दिन का, फिर बोले तो बढ़ा, ऐसा आदमी रोज रोज तंग करता है, कहाँ से दवा ला लिया करें, उसका कहना भी ठीक है, वो उसके काम में हर्ज होता है, पर वो बेचारा क्या करे, वो जो मजबूर है वो अगर दवा रोज मंगवाना चाहता है तो इसमें उसका कसूर क्या, दूसरा कोई है नहीं करने को, समाज में ये चीज़ है नहीं, अभी तक हमारे यहाँ पर ये चीज़ आई नहीं, रूस के बाद कुछ आई होने, यशपाल अभी रूस जा कर के आए, यशपाल जैन, तो वो दिल्ली मिले थे, अच्छी बात है, यशपाल जी दिल्ली में रहते हैं, हिंदी के बड़े अच्छे लेखक हैं, तो उन्होंने मुझको सुनाया कि रूस में जब मैं गया था उस दफ्तर में एक लड़की काम करती थी, उस लड़की को बीमारी हो गई, तो उस लड़की को बीमारी उस दिन वहाँ कोई डॉक्टर आए हुए थे, तो वो अपने क्लिनिक में ले गए, उसका इलाज हुआ, जब उसको छुट्टी मिल गई और छुट्टी के साथ साथ उसको पथ इत्यादि के लिए भी उस फर्म से सारा इंतजाम हो गया, वो अच्छी हो गई। इसके बाद वो जिस विभाग में थी और जिस मोहल्ले में थी, उस मोहल्ले के क्लिनिक वालों को इसका पता लगा कि हमारी एक बीमार दूसरे क्लिनिक में गई, ये बात भी ठीक नहीं है। उसको वो छुट्टी दिलवा के फिर अपने क्लिनिक में ले गए। ये आ गई ज्यादा, फिर उसकी जांच की गई, फिर उसको देखा गया और देख करके उनको धन्यवाद धन्यवाद भेजा गया और कहा गया कि आइंदे हमारे रोगी को आपने लेना। सब एक है, सरकारी है। अभी इंग्लैंड में ऐसी चीज है, हो गई है, फ्री इलाज होता है, वहाँ गवर्नमेंट के इंतजाम है कि वहाँ पर वो डॉक्टर्स हैं, उनको आप फ़ोन कर दीजिए, वो फ़ोन उसके बाद अपने आ जाएंगे वहाँ पर। उनका खर्चा गवर्नमेंट देती है, फीस गवर्नमेंट देती है, नहीं तो वो बेचारे क्या करें, उनको अगर मुफ्त में लगा दे सबको तो डॉक्टर मर जाए, तो वो गवर्नमेंट देती है। पर रोगी के लिए क्या है, डॉक्टर की फीस नहीं, डॉक्टर ये देखेंगे कि ये हमको रोग ऐसा है, खुदा में ये पेशेंट को भेज देंगे और दवा का प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे। वो दवा आप किसी भी दवा वाले के यहाँ से ले आइए, उसका बंधा हुआ रेट है, इतने पैसे आपसे देंगे चाहे दवा कैसे ही हो, और इसके बाद जो कुछ पैसा और रहेगा वो मैं दे देंगे। तो ये चीज़ हमारे यहाँ है नहीं। ऐसी अवस्था में अगर कोई रोगी आदमी दवा चाहे, दवा मंगवाना चाहे, पथ चाहे, तो बेचारा क्या प्राप्त करता है, उसको अगर हम ये समझते हैं कि ये तो बड़ा लपचेल आदमी है, एक शब्द हमारे यहाँ लपचेल है, जो बार बार मांगे उसको लपचेल कहते हैं, बार बार जो तंग करे, ये यहाँ का शब्द है, तो पर उसका उसका दोष क्या है, तो उसके अवस्था में अपने को ले जा, वो अवस्था में ले जाना है बड़ा कठिन, बड़ा कठिन है। एक घटना है ऐसी कि एक बूढ़े पिताजी थे, तो वो कोई घर के बाद थी तो बच्चे से पूछने लगे अपने लड़के से, जवान से, कि भाई फिर क्या हुआ, तो फिर ऐसा, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर कैसी बात, फिर ऐसा हुआ, तीन चार बात बात उसने बताया, उसने फिर पूछा, वो जो सोए हुए थे अपना बूढ़े पिताजी के घर में, काम कदर थे प्यार थे बिल्कुल, कहा फिर क्या हुआ, बोले आप रहने दीजिए, तीन बार बताऊंगा आपसे, मैं क्या फालतू बैठा हूँ, निकम्मा बैठा हूँ, आपके बारे में बताता रहूँ, बता दिया आपसे, आपसे कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा भाई जब तू छोटा सा था और मेरे पेट पर बैठ करके बेमतलब की एक एक बार ज्यादा पूछा करता था और मैं तंग नहीं आता था, तो मेरे चार प्रश्नों पर तंग आ गए। तो ऐसा होता है, ये हमारी स्वभाव की स्थिति है, तंग हम आ जाते हैं। तो सोचना चाहिए कि अगर इस अवस्था में हम होते तो क्या होता, तो दूसरे के अवस्था में अपने को ले जा करके देखे और तब उसके लिए निर्णय करे कि वो बदमाश है कि नहीं, तब निर्णय करे कि इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए और तब निर्णय करे कि इसे क्या दंड होना चाहिए। नहीं तो वो ऐसी चीज समाज में बहुत होती है महाराज कि जो मजबूर कर देती है आदमी को अमुक काम करने के लिए, दुख व्यवस्था दुख है, तो दुख में पड़ा हुआ आदमी जो है वो हमेशा दया का पात्र होता है, प्रेम का पात्र होता है, सेवा का पात्र होता है, सहायता का पात्र होता है, वो घृणा का पात्र नहीं होता। तो दुखियों के प्रति जो मनुष्य की सहानुभूति है, दुखियों के प्रति जो मनुष्य के हृदय का सम्मान है, उसकी बड़ी महिमा है, उस सम्मान की इतनी महिमा है कि वो वहीं पर प्रतिफलित होती है कि जहां वह सम्मान होता है। ये द्रोण ने द्रोण को द्रुपद में हटा दिया, उसी महाभारत कथा है, द्रोण और द्रुपद ये गुरु के घर एक साथ पढ़ते थे और गुरु थे द्रोण के स्वयं पिता ही, तो जब छोटे बच्चे थे तो आपस में मैत्री हो गई, दोस्ती हो गई, तो दोस्ती दोस्ती में बड़ा प्रेम बढ़ा, तो द्रुपद ने कहा कि भैया अगर मैं राजा बना तो तुमको आधा राज्य दे दूंगा, तुम भी सुखी रहोगे मैं भी सुखी रहूंगा। बोले अच्छी बात, द्रुपद राजा हो गए। द्रुपद राजा होने के बाद द्रोण के घर में एक बार वो बड़ी तंगी आ गई, दूध भी नहीं रहा, पीने को अस्वस्थ खाना होता रोज, दूध मिलता नहीं, तो कहा जरा दुपट के पास वहां राजा हो गया है, राजा ने तो गाज नहीं देगा। तो गए ये जाकर के द्रुपद के दरबार में इन्होंने कहलवाया कि दूर खड़े हैं बाहर, मिलना चाहते हैं। तो कहा कौन द्रोण? तो आदमी ने पूछा कौन द्रोण? तो कहा आपका मित्र द्रोण। तो बड़ा गुस्सा आया, बुला लिया पास, बुला करके पूछा भी क्या 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 चाहते हैं महाराज? रुखाई से तो कहा भैया भूल गए, हम तुमके मित्र थे ना द्रुपद, और तुमने क्या कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो अराजित दूंगा, तुमको याद है? तो द्रुपद ने रुखाई से कहा कि कहीं बचपन की दोस्ती का कोई पत्ता हो जाता है? बचपन से कोई कह दिया था, कह दिया था तुम दरिद्र हो और हमको मित्र कैसे हो? कि महाभारत की दुनिया में महाभारत की दुनिया भी एक कारण बना, ये भी एक कारण बना द्रुपद वाला भी। तो द्रोण के हृदय में आग लगी, द्रोण ने कहा बस अब तो यही बात है कि द्रुपद को उसका मजा चखाना है, तब दूसरी बात कर दी। और उसी जमाने में श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया प्राचीन मित्रता को लेकर के, वो भी गुरुकुल में साथ पढ़े थे और कोई संबंध नहीं था, वो भी गरीब ब्राह्मण थे, पर उन्होंने जो गले लगा दिया तो लोग चकित हो गए। सारी द्वारका के लोग आश्चर्य करने लगे कि ये हो क्या गया, ये बिल्कुल कंगाल। वो केवल कंगाल हालत में नहीं, उसकी सकल सूरत ऐसे कंगाल, किसी सी से पगा न जगा चन करे प्रभु जानने को आए बसे कहीं गामा, धोती फटी लटी दी फटी नहीं पाए पाने की कछु सामा, द्वार खड़ो दिल दुर्बल एक रहे चिकसो सुधा बरामा, कुछ दिन बयाल को धाम बता दे आपने नाम सुदामा। ये जब गए सुदामा जब गए बड़ा मजा हुआ। ये पहले तो सुदामा जी जो थे ये जाए नहीं रहे, बहुत समझाया ब्राह्मणों ने कि जाए भैया, वो आपके भैया जो है वो बड़े धनी हैं राजा विश्व, तो महाराज आप जाए उनके पास कुछ मांगे लाए। तो ये कहा हम मित्र से नहीं मांगने जाते, मांग से नहीं, हमारा तो काम नहीं मांगना है, जो मिल जाए सो ठीक। बड़े अभिमानी ब्राह्मण थे, नहीं गए। तो स्त्री के मन में आए एक दिन के भी जाते तो नहीं है पर और मांगेंगे तो ये नहीं, पर एक बार इनको भेज दें यहाँ वहाँ पर और इनके शक्ल सूरत को देख ले तो जरूर दया आएगी, भेज दें। तो स्त्री ने कहा कि महाराज एक काम करो, उनसे आपका प्रेम बबल बहुत प्रेम, हम दोनों एक ही हैं, तो बोलो एक बार मिल आवना उनसे, मिलने में उनको सुख होगा तो सुख होगा वहाँ, बोलिए बात तो ठीक है, मिल आएंगे। जच गई मिलने की, जच तो गई, अब फिर एक फिर समस्या आई, बोले जाते हैं दोस्त के यहाँ तो कुछ ले जाएं खाली हाथ कैसे जाएं? अब घर में कुछ रहा नहीं, बिचारी ब्राह्मणी देख कहाँ से, वहाँ तो बिल्कुल फाका कैसी होती रोज। तो पड़ोसिन के यहाँ गई, पड़ोसिन से कहा कि हमारे स्वामी हैं वो अपने मित्र राजराजेश्वर द्वारकाधीश के पास जाते हैं, कुछ है नहीं घर में हमारे, तो कुछ उनके बाल बच्चों के ले जाना चाहते हैं, कुछ हो तो दे दो। उसने सोचा कि इतने बड़े आदमी कहीं ये जाते हैं तो मांग होगा, वो वह जब जलती भूलती भी थी। तो उसने क्या किया कि बहुत पुराने सड़े चिवड़े थे वो थोड़े से ला के दो तीन मुट्ठी दे दी, बोलिए ले जाओ। सोचा कि ये जब वहाँ जाके देंगे तो अच्छी तरह से वो पेश आएंगे इनके साथ। बांधे कहा है मैं कपड़ा नहीं, तो एक फटा चिथड़ा था उसकी सात आठ तह बना करके उसमें लकड़ी के गाढ़ दे ली और ले चले गए। जब ले चले पहुंचे वहां पर द्वारिका में तो देखे तमाम वहां सोने सोने के महल, द्वारिका उस समय बहुत धनी नगर थे, तमाम स्वर्ण के मकान थे, स्वर्ण मंदिर थे तमाम, वहां के नौकरों का वेशभूषा राजाओं का सा था। किससे पूछे क्या पूछे, दरिद्र ब्राह्मण यहाँ गया उसकी बड़ी बुरी हालत, किससे पूछा कि भाई यहाँ कोई कृष्ण रहते हैं? तो कृष्ण को सभी जानते, पर इनके पूछने वाले जो कृष्ण हैं शायद तो दूसरे होंगे। बोले मेरा क्या, क्यों, क्या काम है? बोले वो हमारे मित्र ने साथ पड़े हुए हैं। तो बोले वो क्या करते हैं? बोले हमने सुना है कि वो द्वारिका के आजकल राजा है। तो लोग हंसने लगे। आखिर एक ने क्या किया, किसी ने मजाक से इनका हाथ पकड़ के श्री कृष्ण का जो वो उनकी कॉलोनी बसी हुई थी, बहुत परिवार, बड़ा परिवार, बड़ा घर, तो बड़े भारी महल थे वो, अंदर दरवाजे दरवाजे बड़ा दरवाजा, तो जो मेन रोड पर दरवाजा था वहाँ ले जा करके उनको खड़ा कर दिया और कहा भाई ये तुम्हारे कृष्ण का महल है। बोले ये महल है? दिखने लगा ब्राह्मण जो चौंधिया करके, अरे ये तो बड़ा सोने सोने का है, इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी चीज। ब्राह्मण बड़ा चिकित्सा हो गया। तो दरबार ने पूछा महाराज चाहते क्या हैं? बोले मैं मिलना चाहता हूँ, मेरा दोस्त है। पहले तो चौकीदार वो जरा घबराया, मैंने फिर सोचा कि भाई शायद कोई हूँ, उनके ऐसे आया करते हैं बहुत से मित्र कभी कभी। तो चलो पूछ ही आओ। तो बड़ी सुंदर वहाँ की घटना है, इनको तो बाहर बैठा दिएगा, आप बैठो। और ये ऊपर गया पूछने को, राजमहल में ऊपर गया, अंतपुर में उसका प्रवेश का अधिकार था। ये हिंदी के नरोत्तम कवि हुए हैं, उन्होंने सुदामा चरित्र लिखा बड़ा सुंदर। उन्होंने ये लिखा है भागवत में, उसी का विस्तार। तो वहाँ गया तब वो देखता क्या है, ये अच्छे लोगों के यहाँ, बड़े लोगों के यहाँ जो नौकर हैं वो बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं, कहाँ कैसे बोलना चाहिए। ये बोलना एक आर्ट है, जबान से आदमी को बैरी बना ले, जबान से मित्र बना ले, जबान से सेवा करवाने वाला बना ले, और जबान से सिर कटवाने वाला बना ले, ये जबान में गुण होते हैं। तो ये जब ऊपर गया उस समय क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण भोजन करके आए हैं, मुकुट उकुट पहने हुए, पीतांबर लगाए हुए, और रुक्मिणी जी उनके हाथ में पान देना चाहती। ये वहां का दृश्य है, खड़े हैं अभी आराम करेंगे, वो पान दे रही हैं, पान अभी लिया नहीं है। इस अवस्था में जा पहुंचा, जिसने सोचा कैसे बोले अब, अगर हठात कह दें कि एक ब्राह्मण है आपको बुला रहा, आपसे मिलना चाहता है, तो वेद भी हो जाएगी और इस समय अंतपुर में पान आराम करने जा रहे हैं। तो इन शब्दों में कहा जाए जिससे बात भी सच हो और इनके हृदय में कुछ पूछने से पहले करुणा पैदा हो जाए, करुणा पैदा हो जाए, इन शब्दों में कहा जाए। तो उसने सोचा कि पहले उसकी करुण दशा का वर्णन करें, फिर मिलने की बात कहें। तो नरोत्तम ने इस पर ये रचना की, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे कई ग्रामा, धोती फटी ओ लटी दुपटी, नहीं पायू पान की कछु सामा, द्वारे खरो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा यभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत यापन नाम सुदामा। महाराज उसके सिर पर तो पगड़ी नहीं और बदन पर कुर्ता नहीं है, न जगाता न पे, और महाराज ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आया, किस गांव का है, बसे कहीं ग्रामा, और धोती महाराज बिल्कुल फटी हुई है, चिथड़े चिथड़े है, और एक चिथड़ा लपेट रखा है दुपट्टे के स्थान में, और महाराज क्या कहें, उसके पैर में जूती भी नहीं, पाए उपान है कि कुछ सामान, और बड़ा दुबला पतला, एक एक पसली निकली हुई, ऐसा द्विज ब्राह्मण है, और बड़ा दुर्बल है, बड़ा दुबला पतला। और वो महाराज देख देख करके आपके इतने इतने महान ऐश्वर्य को चकित हो रहा है। और महाराज अब वहां पर एक शब्द आया, दीन दयाल, दैन्य का वर्णन कर दिया। दैन्य का वर्णन क्यों किया, इसकी सार्थकता होनी चाहिए। दैन्य का जो वर्णन किया, ये अगर किसी राक्षस के सामने कर दे तो वो क्या कहेगा। याद दिलाता है वो कि वो तो दीन है, आप दीन दयाल है, पूछे तो दीन दयाल को धाम, कृष्ण का धाम नहीं पूछता, ऐसा वो दीन है, वो दीन दयाल का धाम पूछता है। महाराज कहता मेरा नाम सुदामा है। ये कहा बड़ा मनोवैज्ञानिक असर, ये कहा कि श्री कृष्ण ने सुदामा आ गया, सुदामा मेरा सुदामा आ गया, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल ले चलो, कलसे ले चलो, परास ले चलो, गंगा जल ले चलो, दौड़ो दौड़ो, उनका स्वागत करना है, पैर धोने हैं, सब चलो सब चलो। रुक्मणी जी ने देखा क्या दंगा हो गया, भगवान भगे, मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया, नंगे पांव पांव भगे, तब सब रानियां दौड़ी, सब नौकर दौड़े, कोई कलसे ले गए, कोई गंगा जल ले गए, जाके वहां पहले से परात रख दी, कहा इसमें पैर धोएंगे, परात में परातों में पानी भर दिया इनके पहुंचने से पहले। ये पहुंचे, पहुंच के सामने गए, सामने जाके हाल देखा तो आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे, और आंसू बहाते हुए बोले आगे बढ़ करके, ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुन जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम आय तैन कितय दिन खोए, ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग पंकंटक जाल गड़े पुन जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम आय तैन कितय दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, लिपट गए। अरे मित्र तुम्हारे पैरों में बीमारी फट गई, अरे कितने कांटे गड़े हुए हैं, राम राम राम, बड़े दुख पाए तुम। यूं कहते कहते करुणा और उमड़ी, आंसू की धारा बह चली, लिपट गए, आलिंगन कर लिया सुदामा का सिर श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर, यूं यूं ऊपर इनका सिर, आंसू की धारा बहती है, सुदामा के मस्तक का अभिषेक करती हुई नीचे जाकर उनके चरणों को धो देती। ये दर्शन इसके बाद जो हुआ, ऊपर ले गए इस, ये वो कहते हैं इस प्रकार तीन पहर तक ये दोनों वहां पर आम रास्ते पर बेहोश, बाहरी होश नहीं रहा दोनों को, लिपटे रोते रहे, इकट्ठे हो गए सारे दरबारी लोग आ गए, श्री कृष्ण द्वारकाधीश के अधीश, उग्रसेन के राज्य निर्माता, राज्य देने वाले, ये दशा जब देखी सब इकट्ठे हो गए, आखिर उद्धव और अक्रूर ने आके दोनों का हाथ पकड़ा, अलग अलग किया, ऊपर ले गए, ऊपर ले जा करके उन्हें बैठा दिया अपने पलंग, और नीचे बैठ करके कांटे निकालने लगे, पीतांबर से अपने पीतांबर को लेकर के पैर पोंछने लगे, और फिर कहा अब जल और लाओ, जल और लाया गया, रानियां सब लाई, लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी पैर धो करके बोले कि आज देखो ना, आज हमारा घर पवित्र होने वाला है, इस जल को ले जाओ रानी और सब महलों में छिड़क दो कि आज हमारा घर पवित्र हो जाए, श्री कृष्ण का घर पवित्र हो जाए दरिद्र ब्राह्मण के चरण धूल से, क्या कि क्या चीज है। उसके बाद बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, पास बैठे, गलबहियां डाली, पुरानी बात करने लगे, जैसे कोई बड़े पुराने अपने घर के मिल गए हों, संकोच वंकोच नहीं, गले में हाथ डाल करके और बैठ गए, बातें करने लगे, गुरुकुल के देखो तुमको याद है ना भैया, हम लोग जल एक दिन लकड़ी लाने गए थे और वहाँ जल बरसा बड़े जोर का, हम लोग रह गए तो गुरु जी ढूंढते हुए गए, तुमको याद है ना भैया, ऐसी बातें करने लगे, सब रानियाँ चकित किए क्या हो गया इनको। उसके बाद अब एक बात इनको कह देता हूँ, बोले कुछ लाए भी हो। अच्छा सवाल, ये बेचारा अब तक अब तक तो सोचा था इसने सुदामा ने कि अपने तो लाई हुई चीज उनको देनी है नहीं, मौके से फेंक देंगे कहीं पर। पर अच्छा उनको न पता लगे, बात ही न चले, वो तो था चुप। अब अकस्मात ये बोले, अकस्मात बोले, बोले कुछ लाए हो कि नहीं, कुछ भेजा वेजा भाभी ने। अब तो सौ भरे पानी गिर गया। वो बेचारा देखे कि कहीं मौका लगे कोई आसपास को इसको फेंक दे, तो तमाम रानियां घेरे खड़ी खिड़की के पास नहीं, श्री कृष्ण उनके चरण पकड़े बैठे। अब फेंके तो कहाँ फेंके, बड़ी मुश्किल, बड़ा असर। बोले भाई लाए जरूर, जरूर दिया होगा, और ये तुम छिपाते हो, तुम देते नहीं, जरूर लाए होगे। वो ऐसे नहीं कि खाली हाथ भेज दे, कुछ कुछ तो भेजा ही होगा। क्या दें, ये सड़े चिड़वे हैं, और यहाँ पर ये इनका वैभव है, बड़ी शर्म मालूम हो उनका, जरूर ला। अरे बोलिए काख में क्या है, अब जो जो बोले ये यूं करें, यूं करें, यूं और बहम हो जाए कुछ है जरूर। बोले कुछ दिखता है बगल में, कुछ दवा दिखता है, दे दे नहीं, यूं कह करके। और भगवान ने छीना, बगल में छीना, छीनते